सास क्या करे, क्योंकि बहू के ऊपर सारा हम बोझ नहीं डाल सकते। दोनों तरफ हकूक और फराइज और ताल्लुकात की गुंजाइश होती है। आप देखिए कि सास को सबसे पहले एक चीज़ याद रखनी चाहिए, उसकी याददाश्त बड़ी तेज़ होनी चाहिए, और वो क्या है, अपना वक्त ना भूले, लिख लें। आप में से जो आजकल बहुएं हैं ना, सारा कुछ लिखें, जो बुरा लगता है, जो चुभता है, जो मुश्किल लगता है, वो किसी कागज़ पे डायरी में लिख के रख दें। फिर जब कल आप सास बनेंगी ना, तो बेटे की शादी के मौके पर उस डायरी को पढ़िएगा, आपको पता लग जाएगा कि आने वाली के जज्बात क्या होते हैं, आपको क्या चीज़ मुश्किल लगी थी इस घर में निभते निभाते, किस तरीके से ये वो करना कराना है। आप जब अपनी बहू लाएं तो सबसे पहले अपना वक्त याद करें, आने वाले की बातें कर लीं, बूढ़ों की खिदमत करें। अल्लाह के नबी ने कहा कि वो हम में से नहीं जो बड़ों पे प्यार और छोटों पे मोहब्बत नहीं करता, करें खुद। लेकिन अब जब आपके घर में एक आ गई है ना, तो आप सबसे पहले अपना वक्त याद करें। दूसरी बात, कदर करें कि आपके बेटे की बीवी है। तीसरी बात, आप देखिए कि उसको गुंजाइश दें। हर बंदा गलतियां कर करके सीखता है, अपनी गलतियों को जरूर लिखा करें, जिंदगी में आदत बना लें, ताकि कल जब आप किसी दूसरे से वो गलती देखेंगे ना, तो आपको अपना वक्त याद आएगा, मैं भी ऐसी हूँ। जैसे मुझे एक सास की माँ बड़ी अच्छी लगी थी, और वो बात क्या थी उनकी, कहने लगी कि हम उनके घर के तो शौक में ना, हमें ले गई उनके कमरे में अपनी बहू के, जैसे शौक भी होता है लोगों को, नियत अच्छी होगी, मैं आपको बहू का कमरा दिखाऊं। तो बहू के कमरे में गए ना, तो ड्रेसर जो था ना, तो उसके ऊपर कुछ डिब्बे पड़े हुए थे, बहू कहीं गई थी उससे थोड़ी देर पहले, तो डब्बा खोला ना, तो उसमें जेवर था। अब जिसने देखा तो वो तो फिर ज़रा टो रहे होते हैं ना, कहते हाँ बच्ची जेवर खुला छोड़ गई, तो सास हंस के कहती शुक्र करें वो डब्बे में छोड़ गई, मैं जब छोटी थी तो मैं शादी में तो टेबल ड्रेसर पैसे खुला छोड़ जाती थी। यदि उसने अपनी इस बहू की साइड ली कि उसने तो चलो द्रास में डाल दिया, मैं तो खुला छोड़ जाती थी, साइड लीजिए। फिर आप देखिए दिल बड़ा रखें, ये घर किसका भी है मुझे नहीं पता, अल्लाह जिनका उनको सलामत रखे, और अपने उनके बच्चे अगर हैं तो बच्चों के बच्चे भी खुशियाँ देखें। आप इस घर को पिछले 20 साल 25 साल से देख रही थी, आपका घर है, मानते हैं इसका तिनका तिनका आपने जोड़ा है, लेकिन याद रखें जो बच्ची इस घर में आ रही है ना, उसकी माँ ने उसको एक ताना ज़रूर दिया, जो करना है अपने घर जाके करना, अपनी मर्जियाँ उधर करना, वो माँ का घर था, अब यहाँ आई तो पता चला ये तो सास का घर है। बहू आती है, उनको शौक होता है घर सेट करते हैं, उन्होंने एक पुरानी सी देखी तस्वीर उतार के रख दी, वो खुश होगी आज घर नया नया लग रहा है, सारे कहेंगे आज घर में एक नई लुक है। सास सही कहती, जरूरत किसको हुई है 20 साल पुरानी तस्वीर उतारने की, लगा इसको इधर ही, ये ज्यादती है, ये ज्यादती है, जगह दीजिए। और फिर इसका बेस्ट थिंग है कि बहुओं के लिए अलग पोर्शन बनाए। देखिए मेरे अपने ससुराल में ऐसे ही है, माशाल्लाह उनके घरों में, आप किसी घर में रात जाते ऊपर मजदूर देखें ना, तो समझ लें इनके बेटे की मंगनी हो गई है। मंगनी से शादी के बीच में कितना वक्त रखते हैं, जितने में एक पोर्शन तैयार होता है, घर के ऊपर वाले पोर्शन में कमरा देते हैं छोटा सा, उसी के अंदर है किचनट, यानी जिसमें सिंक होगा, नाश्ता बहू ने अपने मियाँ को खुद ऊपर देना है, कोई मुतालबा नहीं कि सुबह 7 बजे आप पहुँचे हो, सर्दी में गर्मी में बच्चों को रुलाएं, मियाँ को परेशान करें, आप आएँ जी हमें दें, कोई कर ले तो उसकी एहसान है। बाज़ अच्छी बहू है नाश्ता बना के ट्रे में लगा के, नीचे नीचे सास का कमरा है ससुर का, बहुओं ने कमरे में मियाँ के जाने तक खुद अपना अरेंजमेंट करना है, चीज़ें सारी नीचे से ही जाती हैं, लेकिन जैसे होटलों में छोटा छोटा सेटअप होता है कि अपनी मर्जी से उठें, बच्चा सो रहा है रात को उठ जाता है, दूध गर्म करना है, वो उधर साल रहेगी, 1 साल तक, जो ही एक बच्चा होगा थोड़ा सा वो बच्चा समझदार है, उतने में अल्लाह के हुक्म से दूसरा बच्चा तैयार हो जाता है शादी के लिए, उस बहू को अलग करके 2 गलियां छोड़ के, या उसी गली में एक छोटा सा घर, और ऊपर वाले में दूसरी बहू को ले आएंगे। कभी ऐसा नहीं मुतालबा करते कि एक जगह, और फिर एक वक्त ऐसा आता है कि सारे बेटे अलग और सास अलग, कैसे, बड़ा प्यारा उनका जुमला है, कहती है मेरी बेटियों का भी तो घर चाहिए, बेटियों को माँ के घर आना है, भाभी के नहीं आना, कहती है अगर बहुएं जो सारी होंगी तो मेरी बेटी आएंगी तो वो घबराएंगी, माँ अपना घर ऐसे बनवाती हैं कि जिसमें फिर बेटियां हफ्ते में एक दिन आती हैं, वहां मशहूर है सैटरडे इज मदर डे, सारी बेटियों ने हफ्ते को आना है, और वो एक लंबी कहानी है जिसको ना भी बताऊं तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन हमारे पंजाबी कल्चर में इसकी काफी कमी है, हम ये हक बच्चियों को नहीं देते। आपको पता है कि शादी होगी ना, एक दिन ससुराल एक दिन मैका, एक रात लड़की इधर एक इधर, ये नहीं कि दूल्हा साथ जाता है, वो कहते नहीं बच्ची को जगा दो, उसको आराम करने दो, फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर 2 दिन ससुराल में रहना है, तो एक दिन मैके में, फिर 2 दिन, अब आप सब कहेंगे उनके बेटे हैं तो हमारी बेटियों के रिश्ते करा दें आप ये सोच रहे हैं ना, लेकिन यकीन करें इतने प्यार से वो रखते हैं लाडों के साथ, और फिर जब बच्चे हो जाते हैं तो अखीर में फिर साल 2 साल के बाद हफ्ते का एक दिन सैटरडे दामाद ने बाहर से छोड़ के जाना है, कोई जरूरत नहीं अंदर आने की, कोई दामादों की रोज दावतें नहीं पकनी। दामाद को उस महीने में एक बार बुलाना है, सारे दामादों को उस दिन बुलाना है, तो उस दिन अल्लाह का बंदा अंदर आएगा। नीचे से लेके जाना है, बड़ा हुआ तो बच्चों से लिए सास को सलाम किया, खाना पीना नहीं, लेके जाते हैं, छोड़ के जाते हैं। क्यों? वो कहते हैं कि किसी की बच्ची को लाकर हम थोड़ा टाइम देते हैं, तरीके से सलीके से ले। हम तो शादी के तीसरे दिन देख रहे होते हैं ये भी उठ के आई क्यों नहीं नीचे, हमने तो सुना था बड़ी खिदमत करेगी, ये है वो है। फिर उसके पता थी कि सास का एक और काम है, और वो क्या है कि अपने दिल में इस बात को रखिए, हमारे कल्चर में एक मारूफ बात है, इज्जत करो इज्जत करो। देखिए हज़रत यूसुफ़ का एक किरदार जहन में रखिएगा कि जब उनके भाइयों ने उनको कुएं में डाल दिया, फिर एंड पे सारा किस्सा ख़त्म हुआ तो क्या कहा, ला तसरीब अलैकुमुल यौम, आज के दिन तुम पे कोई पकड़ नहीं, अल्लाह तुम्हें माफ़ करे मैंने भी किया। सासों को अपनी नई नई बहुओं के साथ ऐसा ही मामला करना चाहिए, गलतियां करें, आप माने अपने दिल से लिख लें। मसा आपके अगले हफ्ते बच्चे की शादी है ना, आप मान लीजिए कि आने वाली बहू हर दिन कम से कम 3 गलतियां करेगी, तैयार रहे, बल्कि जिस दिन वो ना करे परेशान हो जाए कि ये मेरी उम्मीदों पे पूरी नहीं उतरी। आप यकीन करें जब आप पहले से एक्सपेक्टेड, आप कहें कि ये बड़ा ही फैलाएगी, इसको रोटी नहीं पकानी आती, किचन, आप जब बहू काम करे कहते हैं काम क्या करना था, फैला दिया, इतना किचन गंदा कर दिया, पानी इतना खोलती है, बर्तन धोती है, पानी बड़ा गिराती है, तो ये आप खुद कर लीजिए आसानी से। देखिए एक और बात रखें कि सास को ट्रेनर होना चाहिए। ट्रेनर कौन होता है? आहिस्ता आहिस्ता साथ रख कर ट्रेनिंग कर लेता है, बच्चियों को साथ लगाएं, चलो बेटा तुम ये सब्जी छीन लो, मैं हंडिया बनाती हूँ, तुम ये कर लो वो। अच्छा कुछ सासें हैं चमचा नहीं हाथ से छोड़ना, हांडी मैंने पकानी है, क्योंकि सबको पता लग जाता है। फिर चाबियों का गुच्छा नहीं छोड़ना, छोड़ दीजिए चाबियों का गुच्छा, वो आपसे नहीं उठ रहा, अब आपकी कमर में दर्द हो जाएगी। ताले में चीज़ें रखना, आप देखिए कि जब वो लफ्ज़ एहसान याद रहेगा ना, चंद लफ्ज़ बोलती हूँ जो कोड वर्ड्स हैं। नंबर एक ईसार, कुर्बानी देना सीखिए, पहले सास कुर्बानी देगी फिर बहू देगी। बहुत सारी सिस्टर्स हैं मुझे मिलती हैं, कहती हैं मैंने जो सीखा अपनी सास से सीखा, माँ के घर का माहौल और था, ससुराल में गए फ़र्क था, कहती हमारी सास ने हमारे साथ इस तरह गैर महसूस तरीके से हमें साथ जोड़ा, पता ही नहीं चला 2-4 सालों में हम कुछ के कुछ बन गए। तो सास को ईसार करना चाहिए, फिर मुरव्वत, फिर एहसान, फिर अखुवत, तहम्मुल, ये कोड वर्ड आप में से जो सास है ना अपने 10 उंगलियों की पोरों पे लिख लें, ईसार मुरव्वत एहसान अखुवत तहम्मुल सिला रहमी, ताना नहीं देना, ज़ुबान को काबू में रखना। देखिए दोनों तरफ बात है, ज़ुबान छोटी दिल बड़ा, कोई आपको वहाँ से नहीं निकाल सकता, आप घर में नहीं अब दिल में बसेंगे। आने वाली की भी ज़ुबान छोटी तो दिल बड़ा, चीज़ें अपनी है तो शेयर करे, नंदों को दे, खेले, तोहफे दे दे। याद रखिए कुछ कमियाँ तोहफों से पूरी हो जाती हैं, कोई खुश नहीं हो रहा जाइए अंदर से निकाल कर कोई छोटी सी चीज़ उसको तोहफे में दे दें, वो इतने में खुश होंगी। फिर अच्छी बहुएं जो होती हैं वो वीक पॉइंट पहचान लेती हैं, उसको पता है कुछ सासें वो तारीफ़ से खुश होती हैं, कुछ तोहफे से खुश होती हैं, कुछ खिदमत। और एक सास की बात बता देती हूँ, आज तक उनकी बहू उनको खुश क्यों नहीं कर सकी, क्योंकि उसको अपनी सास का कोड वर्ड नहीं मिला। और आपको तो उनका कोड वर्ड क्या है कि उनकी तारीफ़ करो, वो कहती मुझे जहर लगती है मैं इनकी तारीफ़ क्यों करूँ, तो मैंने कहा जहर खा लो, तारीफ़ करके देखो ये आपको जहर नहीं लगेंगी। कहती मैं नहीं कर सकती इनकी तारीफ, मैंने कहा करके तो देखें, आंखें बंद करके तारीफ कर दें। और उनकी सास का रियली एक प्रॉब्लम है, और अक्सर आप बहुएं कहेंगे मेरे से नहीं अच्छी ना देवरानी आई है, बड़ी खुश है उसने इनको ठीक रखा हुआ। मैं देखती नहीं देवरानी को गुण पता चल गया कि जहाँ बैठी अम्मी जी बड़ी अच्छी हैं, अम्मी जी ने ये तोहफा दिया, अम्मी जी उसके बारे में आ रहे। बड़ी बहू सारा दिन किचन में काम करती रहेगी, कोई तारीफ नहीं, क्योंकि वो तारीफ नहीं करती। जो बच्ची अक्लमंदी के साथ ये काम कर लेती है ना, उसके बाद फिर इंशाल्लाह उसके साथ बहुत ज़्यादा खैर होती है। फिर आप देखिए एक और जुमला अपने लिए रखिए, और वो क्या है कि अगर आपकी बहू किसी की बेटी है, जैसे आपकी बेटी है किसी की बहू, तो आप अपनी बेटी के लिए क्या चाहते हैं। जैसे वो कहते हैं ना, एक कहावत है चाइनीज़, मैं जब बहू थी तो सास अच्छी नहीं मिली, जब मैं सास बनी तो मुझे बहू अच्छी नहीं मिली। और किसी ने कहा कि बहू सुनाओ कैसी है, का तौबा करो इतनी बुरी, 9 बजे सो के उठती है, आते ही मुतालबा शुरू कर दिया, हर चौथे दिन मैके जाना है, अच्छा, बहुत ही रहम है आप पे, आर अल्लाह पर रहम करे। वो सुनाए, साथ बेटी की भी तो शादी हुई थी, वो कैसी है? का बस मज़े में, क्या 9 बजे से पहले नहीं उठती, और दामाद हर दूसरे दिन छोड़ने आता। बात समझ गए, ये ना कीजिए, दोनों को एक रखिए। फिर आप देखिए कि सास होने के नाते एक जुमला याद रखें, जिन चाहों और अरमानों से उस बच्ची को ब्याह के लाएं, वाकई जितने कपड़े सास बनाती है वो कोई और नहीं बना सकता, पक्की बात है, नहीं बना सकता। आप वो अपने जज्बे लिख लें, बाद में याद रखें। और बाज़ लोगों ने बड़े दावे किए होते हैं, हम देखना कैसे रखते हैं, वो वाकई भी दुनिया ही देखती है कैसे रखते हैं। ऐसे ना करें, इज्जत दें, अपनी बहुओं की इज्जत करें। हम कहते हैं ना बड़े की इज्जत करें, मैं कहती हूँ नहीं, आप छोटे की इज्जत करें। आप दोनों तरफ देखेंगे, आपको इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। फिर इसी तरह से आप देखिए, कभी अपनी बहू की बुराई ना करें। देखिए, साथ रहते बर्तन बचते हैं, कभी अपनी बहू की बुराई बेटे से ना करें। हदीस में आता है कि जिसकी वजह से एक मर्द अपनी बीवी से मुतनफ़र हो गया, बहुत बड़ी वईद है। तो अक्सर ये हदीस पढ़ते हुए मुझे सासें याद आती हैं कि वो सासें कहाँ जाएंगी क़यामत के दिन, जो अपनी बहुओं के लिए बेटों का दिल खट्टा करती हैं। देखिए, आप उसकी बीवी नहीं बन सकती, सॉरी, आप माँ ही हैं, तो आप उसको अपनी बहू के ख़िलाफ़ ना करें। बहू ख़राब काम करे, कभी क्या करें, कभी नहीं, एक दो जुमले ले लें। आप देखिए कि डायरेक्ट कम्युनिकेशन, इंग्लिश में कहते हैं कम्युनिकेशन इज़ दी बेस्ट पॉलिसी। सास को बहू से ऐसा ताल्लुक़ हो, कोई कमी पेशी है, कोई समझाना है ना, कोई इधर उधर नहीं करने की ज़रूरत। ऐसी वही बात है, कूलू कौलन सदी, प्यार से बैठिए, हाथ पकड़ें, गले लगाएं, माथा चूमें, सर चूमें, फिर कह दो मेरा बेटा तू बड़ी अच्छी है। बस ये चीज़ है, ज़रा सा इस पे गौर कर ले। और सास को ये याद रखना चाहिए कि वालदैन से जुदा होकर नए घर में आई है। देखिए, आपके आंगन में एक गुलाब का पौधा लगा हुआ है, फूल दे रहा है, उसकी छोटी सी कोंपल तोड़ के किसी दूसरी सहेली के घर में जाके लगा दें, कुछ दिन कुमला जाएगा। एक बच्ची अपने माँ बाप के आंगन में खिल रही होती है, बाप बहनों भाइयों की लाडली, जब उधर से उतार के उसको अपने घर में लाएंगे तो कुमलाएगी। चंद दिन उसकी केयर कीजिए, फ्रेजल कर, हैंडल विद केयर वाली बात है। फिर इस तरह आप उसकी कभी किसी अपनी दोस्त और किसी उसकी बहू से तकाबुल ना करें। अपनी बहू के लिए आज से एक जुमला लिख लें कि मेरी बहू सबसे प्यारी। मैं कहती हूँ अब ये रिश्ता बोलें, हर एक बोले मेरी सास सबसे प्यारी, बोलते हैं, ज़रा बोले हैं, दिल पे हाथ रख के कानों में उंगलियां दे लें, बोलिए ज़रा, सब पहाड़े की तरह बोले, मेरी सास सबसे, बोलते रहें, बोलिए। फिर आप देखिए आवाज़ें कम हो गई हैं। चलिए, आप दूसरा जुमला, मेरी बहू सबसे प्यारी और मेरी बहू सबसे अच्छी। मुझे पता है आपके दिल पे इस वक्त क्या गुजर रही है। ऐब तलाश करना छोड़ दें, इल्ज़ाम तराशी छोड़ दें, बुरे नाम देने छोड़ दें, ताने देने छोड़ दें, बदगुमानी छोड़ दें, गीबत करना छोड़ दें, क्योंकि इस्लाम ने इन चीज़ों से मना किया है, वरना आपकी सारी तहज्जुदें और नमाज़ें आपकी बहुएं ले जाएंगी और आपकी सासें भी ले जाएंगी। जो जिसकी बुराई करता है, अल्लाह ने सब कुछ रखा है। फिर एक चीज़ जो सासों का बहुत बड़ा फ़र्ज़ है, अपना घर। आप याद रखिए कि इस्लाम ने औरत को ये हक दिया है कि निकाह के बाद शौहर का घर उसका घर होता है। आने वाली बहू को एहसास दिलाइए कि ये आपका घर है, ये आपका भी घर है। ये कहना कि भाई ये मेरा घर है, इस घर में मेरा हुक्म चलेगा, आप अपने जहन में दें। देखिए, औरत सौकन को नहीं बर्दाश्त करती, भला क्यों, कि वो उसके साथ शेयर करती है ना, शौहर भी आधे, और अगर शौहर फौत हो जाए तो आधा आधा वर्षा होगा, ऐसी है ना। बहू सौकन नहीं होती, याद रखिए, बहू और सौकन में ये बहुत बड़ा फ़र्क है कि बहू आपके बेटे की ज़िंदगी है। फिर इसी तरह से मर्द को भी चाहिए कि हत्तुल वसा अपनी बीवी को साथ रखते हुए भी कम से कम उसकी बेसिक चीज़ें जो हैं वो उसको रखे। फिर आप देखिए कि घर में बहू के पहनने ओढ़ने, उसकी जेबो जीनत की भी हिफाजत कीजिए। पहनी ओढ़ी बच्चियाँ जब बीच में, सबके बीच में आती हैं, वो भी ठीक नहीं, और जो बेचारी दीन समझती है फिर वो सब कुछ छोड़ देती है, तो फिर मर्द खुश नहीं होगा। मियाँ बीवी को 2-3 घंटे रात दिन में ऐसे ज़रूर देने चाहिए कि नो इंटरप्शन, इवन ये कमरा है, नहीं जाएगा कोई, रात में, दिन में, सुबह में, शाम में, ऐसा वक्त जो आप सब समझदार हैं समझते हैं, अपनी बहू और बेटे को डिस्टर्ब ना करें। अगर वो अच्छे कपड़े पहने हुए तो ज़रूरी नहीं कि वो बेचारी उस पर चादरें ले लेके निकाब में लिपटी और कुछ खुलता है कुछ दिखता है, ये ना करें। अपने घर के मर्दों से अपनी बहू का पर्दा करवाएं, यकीन करें इससे उसके दिल में आपकी इज्जत बहुत सारी बढ़ जाएगी। फिर इसी तरह से आप देखिए कि घर में कभी आपकी दोस्त आए तो छुप छुप के कानों में बातें ना करें, अपनी बहू की बहुत ज़्यादा बात करें ही ना, और आप देखेंगे कि जो अल्लाह से डरता है उसको फिर नहीं है। और फिर वही बात है कि अगर कभी मियाँ बीवी में झगड़ा हो जाए, पता लग जाता है ना ये आज खुश नहीं है, मूड बना हुआ, सबसे पहले अपने बेटे बहू की सुलह कराने की कोशिश करें। आप देखेंगे कि घर वाले, मुझे ऐसे लगता है कि जैसे फूल है ना, कलियाँ हैं, पत्तियाँ पत्तियाँ हैं, पीछे नई पत्तियाँ और अगली अंदर से निकलती हैं, तो पहली पत्तियाँ पीछे खड़ी हो जाती हैं, ज़रा सा फूल हिले तो वो पीछे की टूटती हैं। घर के बुज़ुर्गों को बाहर वाली लाइन की पत्ती होना चाहिए, नई बहू को, नई पत्तियों को, नए जज्बों को जगह दें और तकाबुल ना करें। जैसे एक बहू थी तो कहने लगी मैं मेकअप कर लूँ तो मेरी सास को गुस्सा आता है, अंदर जाती है फ़ौरन टेढ़ी मेढ़ी लिपस्टिक लगा के आ जाती हैं, कहती पूरे होंठ पे भी नहीं लगी आती, नज़र नहीं आता। और मैंने कहा आपको कैसे पता कि वो आपको देख के लगाती हैं, कहती मुँह से बोलती हैं तू बड़ी सुर्खी ला के आ गई, मैनू भी आंदी लानी, अच्छा जी लगा ले। तो बहू के साथ तकाबुल ना करें। बात सासों का कह के हैं 60 की और कहती नहीं मैं तो भी वो पोलका डॉट पहनती और पोनी टेल करके, बहू का तकाबुल करना। और याद रखे जो औरतें अपनी ज़िंदगी में खूब इंजॉय कर चुकी होती हैं ना वो नहीं ऐसा करती, जिनके जज्बे मरे होते हैं ना वो फिर अपनी बहुओं के साथ तकाबुल करती हैं। खुश हों, प्यार कीजिए, आप देखिएगा कि घर का सुकून बाहर जाएगा। अपने बहू बेटे के लिए ग्लू बने। आप फिर बहू पे भी चंद बातें बोल दूँ, कभी अपनी शौहर को उसकी माँ और बहन के ख़िलाफ़ ना करें। देखिए एक असूल जो सूरत यूसुफ ने दिया, और मैंने सूरह यूसुफ एक दफ़ा सिर्फ रिश्तों के तनाजर में पढ़ाई थी, अपनी बेटियों को सूरह यूसुफ पढ़ाएं। नफ़रतें देख के कभी मोहब्बत नहीं मिलती, यूसुफ़ के भाइयों से ये गलती हुई थी, उन्होंने नफ़रतें दी ताकि जगह खाली हो जाए और हमारा बाप हमसे प्यार करे। कुछ लड़कियां भी ये गलती करती हैं, ससुराल जाती सब के खिलाफ, वो भी खिलाफ वो भी खिलाफ, ताकि शौहर का सारा प्यार हमें मिले। वो शौहर कभी आपसे प्यार नहीं करेगा जिसके साथ आप उसके घर वालों की बुराई करेंगी। जो मोहसिना बहू होती है ना वो कभी अपने ससुराल की बुराई अपने मियाँ से नहीं करती, क्योंकि देखिए आपकी माँ नहीं है वो सास है मान ले, पर आपके शौहर की माँ है, उसकी जन्नत है। आप चाहेंगी कि आपका शौहर जन्नत से महरूम कर दिया जाए सिर्फ इसलिए कि माँ के साथ बदतमीजी करे? इसलिए इन रिश्तों में मत आएं। फिर एक और चीज़ है कि बेटा माँ बाप को कुछ देता है, कम देता है, ज़्यादा देता है, टो ना ले। देखिए एक जुमला बोलती हूँ बहुत ही हिलने वाला है, बहुत सारी बहुओं को गिला होता है कि अपने माँ बाप को बहुत देता है, बूढ़ों ने क्या करना है, पकड़ के बेटियों को ही दे देंगे। देखिए आज आपके मेरे पास जो कुछ है कहाँ से है, अल्लाह ने दिया ना, अल्लाह ज़िंदगी दे आपके भी शौहरों को सब के। आज ये मर्द फौत हो, आपको पता है कि ज़्यादा किसका है, माँ का ज़्यादा है कि बीवी का ज़्यादा है? माँ का ज़्यादा है। माँ को 100 में से 6 मिलने हैं, यानी आप सोचिए कि 6 मिलने, यानी आप एक चीज़ के 8 टुकड़े करें तो छोटा टुकड़ा होता है, 6 टुकड़े करें तो माँ का हक पैसे सूरत की सूरत में भी बीवी से ज़्यादा। तो आज आप उसको थोड़ा भी नहीं देने दे रहे, और अल्लाह ना करे आज फौत हो गए तो फिर आपकी बूढ़ी सास सारा ले जाएगी, आपको थोड़ा मिलेगा। तो अपनी ज़िंदगी में देने दीजिए, कभी बीच में इन चीज़ों में ना आए। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें कभी इन रिश्तों पर ना पकड़े, और आज जाकर माफ़ियाँ मांगें सासों से भी, बहुओं से, और अल्लाह से भी, और दुआ करें कि अल्लाह हमारे लिए इस पुलसरात को आसान कर दे। यकीन करें ये रिश्तों की पुलसरात बड़ी मुश्किल है, और इस सारे के अंदर आप इंशाल्लाह अल्लाह के तकवे के साथ ही कामयाब होंगे। अल्लाह ताला आपकी मेरी मदद फरमाए। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व तुबु इलैक। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समील अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तवाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु ताला खैरि खल्क़िही व असहाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन। رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث। या अल्लाह हमारी इस छोटी सी कोशिश को कबूल फरमा, कमी बेशी से दरगुजर फरमा, हमें आइंदा के लिए अपनी इस्लाह की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमें तौफीक दे के हमारे घरों में सुकून और इत्मीनान हो। या अल्लाह हमें किसी के भी हक को गसब करने वाला न बना। या अल्लाह अगर हमने किसी पे ज्यादती की है तो हमें तौफीक दे के उससे माफ़ी मांगें, और उनको भी तौफीक दे के वो हमें माफ़ कर दें। या अल्लाह हमें इस बात की तौफीक दे के हम تیرے ڈر اور تیرے تقوی کے ساتھ انسانی معاملات کو بھی اچھا رکھے. یا اللہ ہمیں اپنے گھروں میں سکون اور اطمینان کو بڑھانے والا بنا دے. سب ساتھیوں کی جائز خواہشات اپنی رحمت سے پوری فرما. جو کسی معاملے میں بھی پریشان ہے ان کو اس سے نکال دے. جو بیمار ہے ان کو صحت اور عافیت دے. یا اللہ ہمارے ماں باپ پہ اپنی رحمت فرما. جو دنیا میں ان کو صحت عافیت علی زندگی عطا فرما. یا اللہ محتاجی سے بچا. صبر اور سکون کے ساتھ یا اللہ اس دنیا میں رہنے والا بنا. اور یا اللہ جو دنیا سے چلے گئے ان کی بخشش فرما. یا اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ایک دوسرے کی کمی بیشی سے درگزر فرمائیں. اپنے بچوں کو ان کی کمیوں پہ معاف کریں. اپنے ماں باپ کو ان کی زیادتیوں پہ معاف کر دیں. یا اللہ ہمیں آخرت کی فکر لگا دے, جس کے بعد یہ سب مسئلے چھوٹے سے چھوٹے ہوتے جائیں گے. یا اللہ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم تیرے راستے میں اپنے آپ کو اتنا کھپا لیں کہ ہمیں بیکار باتوں اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ سوچنے کا وقت ہی نہ ملے. یا اللہ ہمیں کم سوچنے والا بنا اور زیادہ مصروف رہنے والا بنا دے. یا اللہ یہاں بھی جنہوں نے بھی دعا کے لیے کہا, گھر والوں نے جن جن کی بیماری کی دعا کے لیے کہا, یا جو نہیں کہہ سکے اور ان ساتھیوں میں بھی جو نہیں کہہ پا رہے, یا اللہ ان کی بھی دعائیں قبول فرما. تجھے نام لے کر نہیں بتانا پڑتا, تو سب جانتا ہے. تو اپنی رحمت سے یا اللہ ان دعاؤں کو قبول فرما. یا اللہ تو ہمیں توفیق دے کہ ہم تیرے دین پر اس طرح عمل کر سکیں جیسے کہ عمل کرنے کا حق ہے. ہمارے استادوں پہ رحمت فرما. یا اللہ دنیا میں ان لوگوں پہ رحم فرما کہ جو یا اللہ حقیقت میں تیرے بندے ہیں. اور یا اللہ تو ہمیں اپنی رحمت سے بے نیاز اور غنی کر دے ہر بات سے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.